आइए सुनते हैं राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना भोला। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मसवरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और हर वाक्य के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अंसर कार फरमा होता है। दाना व दाम ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, उनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है। जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं, गालिबा इसी मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। तो आइए सुनते हैं भोला राजेंद्र सिंह बेदी के ज़रिए लिखा हुआ। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलखीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज़खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुखफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्नी के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझते आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, इस पर मुसीबतों का मारा हुआ, बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँगने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊँगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर इस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बास मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँगते ऊँगते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला बात माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई का लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही नन्ही टांगों की गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को ढो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैंने बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल ही में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है, माँ बाप भाई बहन खाविन बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता, एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है? हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने के वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही इसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, खानखा वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है? फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और ख़ुद पाइती में पाँव अड़ाकर चारपाई पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानखा वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानखा वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पाइती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम उसके जिम्मेदार रहोगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा इस ख्याल से कि पटवारी खानखा वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गाँव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जूँ ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बूट लाएंगे, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा, हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज सात शहजादों वाली कहानी के बयान में उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठता ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ से दौड़े और पहले अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूँ जूँ रात का अंधेरा गहरा होता जाता दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। तब मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की, कहो इन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी। मेरे भोले, फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते उन्हें लगा, यह क्या माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली और वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामूजी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन इसी तरह जिस तरह के एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटा कर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे इनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। इसके बाद मेरी आँख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं ना था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलीजा जिस तरह शक हुआ ये कोई इसी से पूछे। अपना सुहाग लूटने पर इसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। आज मैंने मेले की एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आँखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पतरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं, उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवा जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमायनी थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारे पड़ोसी उस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था, यकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे।